हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरमान और अरहम को जैसे ही ये पता चलता है कि ज़ोया अबीर के बंगले में नहीं है, वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। ज़ोया अबीर के पास है, यही सोचकर तो वो उसके पास आए होंगे। लेकिन अब जब उन्हें ये पता चला कि जिस दिन ज़ोया ने अरहम पर हमला किया था, उसी दिन से ज़ोया गायब है, ये सुनकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं। और फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब तक उन्हें ज़ोया नहीं मिल जाती, तब तक वो अपनी माँ गज़ाला जी के साथ रहेंगे, क्योंकि एक यही वो जगह है जहाँ से ज़ोया के बारे में उन्हें जल्दी जानकारी मिल सकती है। अरहम अरमान से कहता हुआ, भाई हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसे अलग अलग शहरों में ढूंढते हैं, और तब तक हमें गज़ाला जी के पास रहना होगा, क्योंकि गज़ाला जी का सीधा संबंध अबीर राठौर से है, और अगर ज़ोया अबीर राठौर को हमसे पहले मिल जाती है तो गज़ाला जी के द्वारा हमें इसकी खबर आसानी से मिल सकती है। अरहम की बात सुनकर अरमान थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला था, तुझे जो करना है तू कर, जहाँ रहना है रह, लेकिन मुझे ज़ोया हर हाल में चाहिए। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया था। तब अरहम गज़ाला जी से कहता है, मैंने भाई को मना लिया है, अब हम कुछ दिन तक आपके साथ ही रहेंगे। जैसे ही गज़ाला जी ने ये सुना, वो खुशी के मारे अरहम से लिपट गईं, और जैसे ही वो गले लगने के लिए अरमान की ओर बढ़ी, अरमान ने उसे बीच में ही रोक दिया और दूसरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। वही दो आंखें बहुत देर से उन दोनों भाइयों को देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि अबीर और अकरम थे, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनका प्लान काम जो कर गया था। तभी अबीर ने कहा, इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से चलता करो, क्योंकि मुझे निकलना है, मेरा दिल नहीं लग रहा है आपकी बहन के बिना। अबीर की बात सुनकर अकरम मुस्कुराने लगा था। तभी वो दोनों नीचे गए और उन्होंने देखा, गज़ाला जी भरी हुई आंखों से अरमान को देख रही थी। तब अबीर उनके पास आया और बोला था, आंटी आप अपने दोनों बेटों के साथ खाना खाकर जाइएगा। अबीर ने इनडायरेक्टली उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया था, और तभी अबीर की बात सुनकर अरमान गुस्से से वहां से बाहर निकल गया था और अरहम से जाते जाते बोला था, मैं तेरा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ। ऐसा कहकर वो अबीर पर उचटती सी नज़र डालकर वहां से निकल गया था। तभी अरहम ने अपना हाथ अबीर की ओर बढ़ाया और बोला था, अबीर भाई मैं आपसे पूरे बिजनेस प्लान के साथ बाद में मिलता हूँ, अभी आप हमें इजाज़त दीजिए। ऐसा कहकर वो भी वहां से निकल गया था। तभी गज़ाला जी अबीर के सर पर हाथ फेरती हुई बोली थीं, मेरे बेटों की जान बख्शने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ऐसा कहकर वो भी वहां से चली गई थीं। उनके जाने के बाद रिया अपने हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स पैक करके ले आई थी और अबीर के हाथों में देते हुए बोली थी, जीजू ये ज़ोया दी और आपके लिए खाना है, मुझे पता है आप उनके बगैर तो कुछ खाओगे नहीं, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए खाना पैक कर दिया है। अबीर ने मुस्कुराते हुए रिया के हाथ से खाना ले लिया और बोला था, आज आपका जीजू बुलाना वाकई मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। रिया अब जो रिश्ता आपसे जुड़ चुका है तो उसी नाम से तो बुलाना होगा ना। ऐसा कहकर रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। तब अकरम बोला था, अबीर साहब आपको यहाँ की कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब इन दोनों भाइयों को मैं कैसे घुमाता हूँ आप देखते रहिए, और डोंट वरी उनकी एक एक पल की खबर आप तक पहुँचती रहेगी। अरमान अरहम गज़ाला जी को लेकर उनके घर की ओर रवाना हो गए थे। पूरे रास्ते गज़ाला जी ने अरमान से बात करने की पूरी तरह से कोशिश की थी, लेकिन अरमान ने उन्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी थी। लेकिन अरमान के बदले अरहम ने उनकी सभी बातों का बेदिली से जवाब दिया था। जल्द ही वो कल गज़ाला जी के साथ उनके घर पहुंच चुके थे। अरमान का बिल्कुल मन नहीं था कि वो गज़ाला जैसी मतलबी औरत की मदद ले, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अरमान ने गज़ाला जी का घर देखा था, उनके अकेले के हिसाब से वो काफ़ी बड़ी जगह थी, वहाँ आराम से 6 से 7 लोग रह सकते थे। गज़ाला जी के घर में जाते ही अरमान ने बड़े ही रूखे लहजे में कहा था, मेरा कमरा कहाँ है? गज़ाला जी ने अपनी उंगली के इशारे से अरमान को सीढ़ियों से ऊपर जाकर सेकंड रूम बता दिया था। वो कमरा गज़ाला जी के बंगले का सबसे खूबसूरत कमरा था, जो गज़ाला जी ने बिना सोचे अरमान को दे दिया था। अरहम भी गज़ाला जी से फॉर्मेलिटी पूरी करता हुआ एक कमरे में चला गया था। गज़ाला जी आराम करने के बजाय अपने बेटों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाने के लिए किचन में घुस गई थीं। गज़ाला जी सोच रही थी, जैसे वो बचपन में अपने बच्चों की पसंदीदा चीज बनाकर उन्हें खुश किया करती थी, अब भी वो ऐसा ही कुछ करेगी और उसके बच्चे जो उससे नफरत करते हैं वो उससे एक बार फिर प्यार करने लगेंगे। यही सोचते हुए वह अरमान और अरहम के बचपन की सारी फेवरेट डिशेज याद करने लगी थीं। वही दूसरी ओर अबीर के अमेरिका जाने के बाद मेहर ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, और इतना ही नहीं, उसने राजबीर को अपने कमरे में ही कैद करके रखा हुआ था। सीधी साधी मेहर अब पूरी तरह से शहरी आबो हवा में डूब चुकी थी। छोटे छोटे कपड़े पहनना, पार्टी करना, ड्रिंक करना, अब ये सब कुछ उसके डेली रूटीन में शामिल होता जा रहा था। इन दिनों मेहर एक नंबर की अय्याश बन चुकी थी। अगर दिन में दो बार वो किसी मर्द से फिजिकल नहीं होती थी, तब तक उसके जिस्म को राहत नहीं मिलती थी, और वो हर बार किसी नए लड़के को अपने साथ अपने बेडरूम में ले आती थी और राजबीर के सामने ही उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाती है। मेहर ने दिन पर दिन अरमान का सारा बिजनेस संभालती जा रही थीं और उसे हर कदम पर कामयाबी मिल रही थी। अगर उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना हो और उसमें कुछ मुश्किल लग रही हो, तो वो या तो उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास बिस्तर तक ले आती थी, या फिर उसे तेजा के हाथों इस दुनिया से हटवा देती थी। जल्द ही मेहर इस शहर का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी। राजवीर की हालत उस कुर्सी पर बंधे बंधे खराब होने लगी थी। उसे बस टॉयलेट वगैरह के लिए ही खोला जाता था और उसके बाद उसे वापस उस कुर्सी से बांध दिया जाता था। राजवीर जिस्मानी रूप से अब बेहद कमज़ोर हो चुका था, और जब मेहर उसके सामने ही किसी और के साथ बिस्तर में होती थी, तो राजवीर को अपना जिस्म तपता हुआ सा महसूस होने लगता था। फिर एक दिन मौका पाकर राजवीर ने अपने अंकल शमशेर सिंह को एक कॉल कर दिया था और मदद की गुहार लगाई थी। वही दूसरी ओर अबीर राठौड़ रिया के द्वारा दिया गया खाना लेकर अपने बड़े से प्राइवेट जेट में बैठकर एक अननोन प्लेस की ओर रवाना हो गया था। अबीर मन ही मन मुस्कुलाता हुआ अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, और जल्द ही उसका जेट किसी बड़े से बंगले के टेरेस पर लैंड कर चुका था। अबीर जल्दी से नीचे उतरा और सीढ़ियों के द्वारा उस बंगले के अंदर जाने लगा था। अबीर के अमेरिका वाले बंगले से भी ज्यादा शानदार ये बंगला था। अबीर जल्दी से उस बंगले के एक बड़े ही खूबसूरत कमरे में पहुंच गया था। अबीर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने देखा सामने एक बड़े ही खूबसूरत बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ोया ही थी, जो शायद बीमार होने की वजह से एकदम कमज़ोर सी हो गई थी।
अबीर हल्के से नम आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसके पास बैठकर उसके हाथ पर हाथ रखा, ज़ोया ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली थीं, और आंखें खोलते ही जैसे ही उसने अपने पास अबीर को पाया, ज़ोया उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगी थी, और उसने जो अपने हाथ में एक इंजेक्शन पकड़ा हुआ था, उसने ज़ोर से वो इंजेक्शन सीधा अबीर राठौड़ के सीने में घोंप दिया और उसे धक्का देकर बदहवास सी हालत में वहाँ से भागने लगी थीं। अबीर ज़ोया के इस रिएक्शन के लिए रेडी नहीं था और वो नीचे जा गिरा था। ज़ोया बदहवास सी हालत में उस बंगले में चारों ओर भाग रही थी, दौड़ रही थी। वो कभी किस दरवाजे में जाती तो कभी किस दरवाजे में जाती, लेकिन उसे कहीं पर भी उस बंगले से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दिया था। ज़ोया का डर के मारे बुरा हाल था और वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थीं कि वो किस ओर जाएं, और तभी उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ और उसने डरते डरते पीछे देखा तो वो हैरान रह गईं। उसके ठीक पीछे अबीर राठौड़ खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ ज़ोया के मारे गए इंजेक्शन पर था। उसके सीने से थोड़ा थोड़ा खून निकलना शुरू हो गया था। ज़ोया उसे देखकर एकदम से डर गईं और उसे देखते हुए बोलने लगी थीं, मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहते हुए ज़ोया पीछे पीछे हटती जा रही थीं और अबीर उसके आगे आगे बढ़ता जा रहा था। ज़ोया को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो पीछे जा रही थी। वहाँ सीढ़ियाँ थीं और वहाँ कोई ग्रिल भी नहीं लगी हुई थी। ज़ोया जैसे जैसे पीछे जा रही थी, उसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। अबीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ोया को लग रहा था वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब जब अबीर को लगा कि ज़ोया रुकने नहीं वाली है, तो वो एकदम तेज चलता हुआ उसके पास गया, और जैसे ही ज़ोया गिरने को हुई, अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ोया का एक पैर हवा में था। अगर अबीर उसे टाइम रहते नहीं पकड़ता तो वो वहां से गिरने वाली थी, लेकिन अबीर ने वक्त रहते उसे बचा लिया था। ज़ोया ने एक चीख के साथ अबीर के सीने में अपना सिर छुपा लिया था। तब अबीर ने उसे उसी पोजीशन में गोद में उठाया और उसे उसके बड़े से खूबसूरत कमरे में ले आया था। जोया को उसने बड़े ही प्यार से बेड पर लिटा दिया था और खुद उसके पास पड़ी एक चेयर पर बैठ गया था। जोया डरी डरी सी अबीर की ओर ही देखे जा रही थीं। उसे लग रहा था अबीर अब उसे सजा देगा, क्योंकि उसने अबीर के सीने में सुई घोंप दी थी जिससे उसकी दर्द भरी आह भी निकल गई थी। जोया सोच रही थी अब न जाने अबीर उसके साथ क्या करेगा। जोया को लग रहा था अबीर ने उसका किडनैप किया है और किडनैप होने के बाद उसे अरमान और अरहम का किया हुआ जुल्म याद आने लगा था। राइट 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 राइट, प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स करें प्लीज़।